एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो
सचमुच हमारे चारों ओर है,
हर जगह।
हाँ,
फूलों की पंखुड़ियों में देख लीजिए, अपने चेहरे की बनावट में, अरे यहां तक कि ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों में भी। ये है समरूपता, यानी कि सिमेट्री।
हाँ, और इसे गहराई से समझने के लिए हम इयान स्टुअर्ट की बहुत ही दिलचस्प किताब है सिमेट्री, उसके पन्ने पलटेंगे। मैं हूँ आपकी दूसरी साथी इस चर्चा में।
और मैं हूँ आपका पहला मेजबान। तो सवाल ये उठता है कि समरूपता की बात आज ही क्यों, मतलब ये विषय इतना जरूरी क्यों है आजकल?
देखिए, बात यह है कि समरूपता सिर्फ वो नहीं जो आंखों को अच्छा लगे। मतलब हाँ, सुंदर तो होती है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तो प्रकृति के काम करने का, आप कह सकती हैं, एक फंडामेंटल तरीका है।
अच्छा।
हाँ, विज्ञान की जो बड़ी बड़ी खोजें हैं ना, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम वगैरह, वो इसी से जुड़ी हैं। और हमारी कला, हमारे डिजाइन, सब पर इसका गहरा असर है।
इसे समझना एक तरह से दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
मतलब ये सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि सृष्टि में व्यवस्था का सिद्धांत है।
बिल्कुल, व्यवस्था का सिद्धांत।
बिल्कुल।
तो चलिए, इस सफर में जो हमारे गाइड हैं, लेखक इयान स्टुअर्ट, उनसे मिलते हैं जरा। ये कोई आम लेखक नहीं है भाई।
हाँ, बिल्कुल नहीं।
वे वार्विक विश्वविद्यालय में गणित के एमेरिटस प्रोफेसर हैं, पर उनकी खास बात यह है कि वे गणित और विज्ञान जैसे मुश्किल समझे जाने वाले विषयों को आम लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं।
सही कहा। और सोचिए जरा, उन्होंने 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं।
100 से ज्यादा, कमाल है,
है ना? स्टुअर्ट इस विषय के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं, क्योंकि उनमें ना दो कमाल की खूबियां एक साथ मिलती हैं। एक तरफ तो वो एक गंभीर शोध गणितज्ञ हैं, जिन्हें समूह सिद्धांत यानी ग्रुप थ्योरी जैसे जटिल विषयों की बहुत गहरी समझ है।
और दूसरी तरफ
वो कमाल के कम्युनिकेटर हैं। मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को भी वो इतनी सरल भाषा, दिलचस्प कहानियों और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाते हैं कि बात सीधे दिल और दिमाग तक पहुंच जाती है। उनका नजरिया सिर्फ ये नहीं है कि गणित का इस्तेमाल कहाँ होता है, बल्कि वो गणित की अपनी अंदरूनी खूबसूरती और उसकी ताकत को दिखाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का एक नजरिया है, एक भाषा है।
अच्छा, तो किताब पर आते हैं, इसे जरा खोलकर समझते हैं। ये किताब आखिर कहती क्या है? इसका मतलब मूल विचार क्या है?
देखिए, इसका मूल विचार ये है कि समरूपता सिर्फ ज्यामिति या देखने की सुंदरता तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ब्रह्मांड का एक मौलिक, एक व्यवस्था बनाने वाला सिद्धांत है।
व्यवस्था बनाने वाला सिद्धांत?
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, जो हर चीज को एक ढांचे में बांधता है।
यानी ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती की बात नहीं है, बल्कि अंदरूनी बनावट, अंदरूनी संरचना की बात है।
बिल्कुल। और किताब ये बताती है कि समरूपता को समझने की जो गणितीय भाषा है, जिसे समूह सिद्धांत कहते हैं, वो असल में प्रकृति के नियमों को समझने का एक बेहद शक्तिशाली जरिया है।
अच्छा, हर तरह के नियमों को?
हाँ, चाहे वो बर्फ के क्रिस्टल का वो जटिल सा पैटर्न हो, या किसी फूल की पंखुड़ियाँ हो, या फिर वो जो कण भौतिकी में छोटे छोटे कणों का व्यवहार होता है, ये गणितीय भाषा उन सब पर लागू होती है।
तो ये किताब एक बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही है कि भाई आखिर समरूपता है क्या, और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हर जगह?
हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की समझ, जैसे आईने में अपना अक्स देखना, और विज्ञान में जो इसका गहरा अमूर्त महत्व है, उसके बीच एक पुल जैसा बनाती है।
हाँ, और स्टुअर्ट ना एक बहुत ही जरूरी बदलाव लाते हैं हमारी सोच में।
हाँ,
वो कहते हैं कि अगर हम समरूपता को इस तरह समझें, परिवर्तन के तहत अपरिवर्तनीयता, यानी इनवेरियंस अंडर ट्रांसफॉर्मेशन।
क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि कोई चीज किसी क्रिया के बाद भी वैसी ही बनी रहे। जैसे आप किसी चीज को घुमाएं या पलटें और वो फिर भी वैसी ही दिखे। अगर हम इसे ऐसे समझें, तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका खुल जाता है। इस परिभाषा में ही इसकी असली शक्ति छुपी है।
सुनने में तो ये एक पूरी वैचारिक यात्रा लग रही है, मतलब एक सफर जैसा।
है भी, बिल्कुल है। किताब रोजमर्रा की समरूपता से शुरू होती है, हमारे चेहरे, भूल, तितलियां, पुरानी इमारतें, फिर ये समरूपता की औपचारिक परिभाषा देती है।
वही वाली कि ये देखने के बारे में नहीं बल्कि
हाँ कि ये असल में चीज के दिखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी इस बारे में है कि आप उसे बिना बदले उस पर क्या कर सकते हैं।
और फिर ये हमें गणित की दुनिया में ले जाती है।
हाँ, फिर ये हमें समूह सिद्धांत के इतिहास में ले जाती है। खासकर एक युवा फ्रांसीसी गणितज्ञ थे एवारिस्ट गैलवा, उनकी बड़ी दुखद लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है, उसके जरिए समझाती है।
ओ गैलवा, हाँ सुना है उनके बारे में।
फिर ये दिखाती है कि ये जो गणित का टूलकिट है ये भौतिकी में कैसे काम आता है, जैसे नोएथर का मशहूर प्रमेय है, फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और यहाँ तक कि ये समरूपता के टूटने मतलब सिमेट्री ब्रेकिंग जैसी जटिल अवधारणाओं को भी छूती है। ये बहुत जरूरी है हमारे ब्रह्मांड की जटिलता को समझने के लिए।
और अंत कहाँ होता है इस यात्रा का, मतलब किताब कहाँ ले जाकर छोड़ती है?
अंत में ये हमें आधुनिक भौतिकी की सीमाओं तक ले जाती है, जहाँ सुपर समरूपता जैसी नई अवधारणा है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी हर चीज के सिद्धांत की खोज में वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन कर रही हैं। तो ये दिखाती है कि समरूपता का ये जो आइडिया है ये कितना शक्तिशाली और कितना दूर तक जाता है।
चलिए अब किताब के कुछ हिस्सों में और गहराई से उतरते हैं। तो पहले भाग में स्टुअर्ट बुनियाद रखते हैं ना?
हाँ बिल्कुल।
शुरुआती अध्याय जैसे अध्याय एक और दो, वो जाने पहचाने उदाहरणों से भरे हैं, हमारे चेहरे, जानवर, बर्फ के क्रिस्टल, कला, वास्तुकला। यहाँ समरूपता की वो समझ बनती है जो हमें सहज रूप से महसूस होती है, सुंदरता से जुड़ी हुई।
लेकिन फिर आता है एक महत्वपूर्ण वैचारिक मोड, वो है समरूपता की औपचारिक परिभाषा। जैसा हमने कहा, ये वस्तु के सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है।
हाँ,
बल्कि इस बारे में है कि आप उस पर क्या कर सकते हैं बिना उसे बदले। मिसाल के तौर पर एक वर्ग यानी स्क्वायर को लीजिए, अगर आप उसे 90 डिग्री घुमाते हैं
तो वो वैसा ही दिखता है।
हाँ, 180 डिग्री पर भी वैसा ही, 270 पर भी, या उसे कुछ खास लाइनों पर पलटते हैं तो भी वो एक वर्ग ही दिखता है। ये जो क्रियाएं हैं, घुमाना, पलटना, ये उसकी समरूपताएं हैं। यही है परिवर्तन के तहत अपरिवर्तनीयता।
अध्याय तीन में इसका एक बड़ा दिलचस्प व्यवहारिक अनुप्रयोग है टाइलिंग और पैटर्न में। यहाँ 17 वॉलपेपर समूहों का जिक्र आता है। ये क्या बला है, सुनने बड़ा अजीब है।
हाँ सुनने में लगता है, पर कमाल की चीज है ये। ये गणितीय रूप से सिद्ध वो 17 अनोखे तरीके हैं जिनसे किसी भी समतल सतह जैसे दीवार या फर्श को दोहराए जाने वाले पैटर्न से पूरी तरह ढका जा सकता है बिना किसी खाली जगह या ओवरलैप के।
सिर्फ 17 तरीके पूरी दुनिया में?
हाँ सिर्फ 17। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की अनंत डिजाइनें, चाहे वो मुगल कालीन जाली का काम हो या हमारे घरों की टाइलें या फिर एश्चर की वो दिमाग घुमा देने वाली कलाकृतियाँ,
हाँ एश्चर,
वो सब गणितीय रूप से सिर्फ इन 17 संरचनाओं में से ही किसी एक पर आधारित होती हैं। ये दिखाता है कि कैसे गणित अनंत दिखने वाली डिजाइन की संभावनाओं में एक छुपी हुई व्यवस्था, एक ऑर्डर ले आता है।
कमाल है, सिर्फ 17 तरीके। अच्छा अब आते हैं दूसरे भाग पर। ये समरूपता की भाषा यानी समूह सिद्धांत पर केंद्रित है ना?
हाँ, अध्याय चार में किताब के गणितीय इंजन समूह सिद्धांत ग्रुप थ्योरी का परिचय होता है, और ये परिचय एक बेहद नाटकीय और दुखद कहानी के जरिए दिया गया है।
गैलवा की कहानी?
हाँ, फ्रांसीसी गणितीय प्रतिभा एवारिस्ट गैलवा की कहानी। गैलवा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में एक द्वंद्व युद्ध यानी ड्यूअल में मारे जाने से ठीक पहले की रात जागकर गणित के नोट्स लिखे थे, और उन्हीं नोट्स में समूह सिद्धांत की नींव थी।
ये सोचना ही अविश्वसनीय है, एक 20 साल का लड़का एक रात में गणित की पूरी नई शाखा की नींव रख गया। पर क्या वो ये काम समरूपता समझने के लिए कर रहे थे?
नहीं, यही तो मजेदार बात है। वो तो उस समय की एक बड़ी गणितीय पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ बीजीय समीकरण मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्यों हल किए जा सकते हैं और कुछ क्यों नहीं, खासकर पांचवी डिग्री के समीकरण क्विंटिक।
अच्छा,
उस समय के गणितज्ञों के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, और गैलवा के काम ने समझाया कि कुछ समीकरणों के हलों में एक निश्चित पैटर्न या समरूपता होती है जबकि क्विंटिक में नहीं।
तो उन्होंने अनजाने में ही समरूपता की सटीक गणितीय भाषा बना दी, और आधुनिक भौतिकी के लिए एक बेहद जरूरी औजार भी।
बिल्कुल।
अध्याय पांच में स्टुअर्ट समझाते हैं कि ये समूह आखिर है क्या।
सरल शब्दों में कहूं तो एक समूह उन सभी क्रियाओं का एक सेट है, जैसे घुमाना, पलटना, जो किसी वस्तु को अपरिवर्तित रखती हैं, और ये क्रियाएं कुछ खास गणितीय नियमों का पालन करती हैं जब उन्हें एक साथ मिलाया जाता है। अलग अलग तरह के समूह होते हैं, लेकिन मुख्य बात ये है कि समूह किसी वस्तु की समरूपता के सार को पकड़ते हैं। अगर दो अलग अलग दिखने वाली चीजों का समूह गणितीय रूप से एक जैसा है तो उनकी अंदरूनी समरूपता संरचना भी एक जैसी होगी, चाहे वो एक त्रिभुज हो, पानी का एक अणु हो या कोई जटिल समीकरण। ये गणित की ताकत है अमूर्त संरचना को पकड़ने की।
अब बात और भी रोचक होती जा रही है। तीसरा भाग इस अमूर्त गणित को हमारी भौतिक दुनिया से जोड़ता है। अध्याय 6 में हम मिलते हैं 20वीं सदी की एक और महान गणितज्ञ एमी नॉयथर।
एमी नॉयथर, हाँ, उनका प्रमेय तो विज्ञान के सबसे खूबसूरत और गहरे विचारों में से एक माना जाता है। ये एक चौंकाने वाली बात सामने लाता है।
क्या कहता है ये प्रमेय?
ये कहता है कि भौतिकी के नियमों में हर निरंतर समरूपता, मतलब कंटिन्यूअस सिमेट्री, के लिए एक संगत संरक्षण नियम यानी कॉन्जर्वेशन लॉ होता है। मतलब अगर प्रकृति के नियम किसी तरह से सममित हैं तो कोई ना कोई भौतिक मात्रा हमेशा संरक्षित रहेगी, बदलेगी नहीं।
क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
बिल्कुल, सोचिए अगर भौतिकी के नियम समय के साथ नहीं बदलते, यानी समय में समरूपता है, जो नियम कल लागू थे वही आज भी हैं,
तो
इसका सीधा नतीजा है ऊर्जा का संरक्षण, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है।
अच्छा,
अगर नियम स्थान में हर जगह एक जैसे हैं, यानी स्थान में समरूपता है, जो नियम यहाँ पृथ्वी पर हैं वही दूर किसी आकाशगंगा में भी हैं,
तो फिर संवेग संरक्षण।
बिल्कुल, संवेग का संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अगर नियम इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आप किस दिशा में देख रहे हैं, यानी घूर्णन समरूपता है,
तब कोणीय संवेग,
एंगुलर मोमेंटम। एकदम सही, कोणीय संवेग का संरक्षण, कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संरक्षण के नियम हम स्कूल में रटते आए हैं वे कोई अलग थलग ऐसे ही बना दिए गए नियम नहीं है।
बिल्कुल नहीं, नॉयथर ने दिखाया कि वे मनमाने नियम नहीं हैं, वे स्पेस और टाइम की समरूपताओं के प्रत्यक्ष तार्किक परिणाम है। समरूपता ही इन मूलभूत संरक्षण नियमों का कारण है। ये सोचना ही कमाल है, समरूपता भौतिक नियमों की असली नींव है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। अध्याय 7 एक और उतने ही महत्वपूर्ण विचार पर बात करता है, समरूपता का टूटना, सिमेट्री ब्रेकिंग।
हाँ, क्योंकि अगर ब्रह्मांड पूरी तरह से सममित होता, हर जगह हर दिशा में एक जैसा, तो ये एक बेहद उबाऊ एक सार सूप जैसा होता।
कोई स्ट्रक्चर नहीं होता,
कुछ नहीं, न तारे होते, न ग्रह, न आकाशगंगाएं और न ही जीवन। दुनिया की सारी रोचक जटिल संरचनाएं तभी बनती हैं जब पूर्ण समरूपता किसी तरह से टूटती है।
इसका कोई सरल उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से?
स्टीवर्ट एक सरल उदाहरण देते हैं। एक पेंसिल को उसकी नोक पर संतुलित करने की कोशिश करें। सैद्धांतिक रूप से ये स्थिति पूरी तरह से घूर्णी समरूपता रखती है। पेंसिल किसी भी दिशा में गिर सकती है, लेकिन ये स्थिति अस्थिर है।
हाँ, गिरेगी।
जैसे ही पेंसिल गिरती है वो एक खास दिशा चुन लेती है और शुरुआती समरूपता टूट जाती है।
पानी का बर्फ बनना भी तो ऐसा ही कुछ है। तरल पानी में अणु हर दिशा में बेतरतीब ढंग से फैले होते हैं, मतलब उच्च समरूपता, लेकिन जब वो जमता है तो अणु एक व्यवस्थित क्रिस्टल संरचना में बंध जाते हैं।
हाँ, जिसकी समरूपता तरल पानी से कम होती है।
बिल्कुल,
और इसका सबसे गहरा उदाहरण कण भौतिकी में मिलता है, हिग्स मैकेनिज्म,
हिग्स बोसोन वाला।
हाँ, वही। माना जाता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में सारे कण द्रव्यमान रहित थे और सारे बल एक थे, मतलब एक उच्च समरूपता की अवस्था थी। फिर हिग्स फील्ड के असर से यह समरूपता टूटी
और कणों को वजन मिला।
हाँ, कणों को द्रव्यमान मिला और बल अलग अलग हो गए, जैसा हम आज देखते हैं। तो एक तरह से अपूर्णता या समरूपता का टूटना ही जटिलता, संरचना और शायद जीवन को भी संभव बनाता है। कहा जा सकता है कि पूर्ण समरूपता एक तरह की मृत्यु या ठहराव है, जबकि उसका टूटना गतिशीलता और विविधता लाता है।
अब आते हैं चौथे भाग पर, ये समरूपता के अनुप्रयोगों और सीमाओं पर केंद्रित है।
हाँ, अध्याय 8 दिखाता है कि समरूपता के सिद्धांत विज्ञान और प्रकृति में कितने फैले हुए हैं। क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल जैसे नमक या हीरा, उनकी अंदरूनी परमाणु संरचना समरूपता समूहों द्वारा कंट्रोल होती है। यही उनके बाहरी आकार और गुण तय करता है।
अच्छा, जैसे कठोरता, चमक वगैरह।
हाँ, और याद है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो क्रिस्टल की समरूपता का ही इस्तेमाल करती है, उसी ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को उजागर करने में मदद की थी।
हाँ बिल्कुल।
रसायन विज्ञान अणुओं की समरूपता उनके रासायनिक व्यवहार पर बहुत असर डालती है। जीव विज्ञान जीवन में तो समरूपता आम है, कई वायरस आइकोसाहेड्रल समरूपता दिखाते हैं, डीएनए खुद हेलिकल समरूपता दिखाता है।
और हम इंसान, हमारी भी तो सिमेट्री है।
हाँ, हम इंसानों समेत ज्यादातर जानवरों में द्विपक्षीय समरूपता दिखती है, शरीर का दाया और बाया हिस्सा लगभग एक जैसा। इसके गहरे विकासवादी कारण है। स्टुअर्ट यहाँ फाइबोनाची संख्या और सुनहरे अनुपात का भी जिक्र करते हैं, जो अक्सर पौधों की पत्तियों फूलों में दिखते हैं, प्रकृति का अपना गणित।
और अध्याय 9 भविष्य की ओर देखता है, आधुनिक भौतिकी की सीमाओं की ओर। ऐसा लगता है कि समरूपता का विचार आज भी वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन कर रहा है।
बिल्कुल, कण भौतिकी का मानक मॉडल, जो हमारे ज्ञात सभी मूल कणों और बलों का सबसे सफल विवरण है।
गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर?
हाँ, उसे छोड़कर वो मॉडल पूरी तरह से गणितीय समरूपता समूहों पर आधारित है। ये समूह एक तरह से प्रकृति के व्याकरण की तरह हैं।
और सुपर समरूपता का क्या, वो क्या चीज है?
हाँ, फिर स्टुअर्ट सुपर समरूपता यानी सूसी की अवधारणा का परिचय देते हैं। ये एक प्रस्तावित और भी गहरी छुपी हुई समरूपता है।
छुपी हुई?
हाँ, सोचिए जैसे हर पदार्थ बनाने वाले कण का एक बल संचारित करने वाला साथी कण हो, और उल्टा भी। हालांकि इसे अभी तक प्रयोगों में सिद्ध नहीं किया गया है, सूसी ब्रह्मांड के कुछ बड़े रहस्यों जैसे डार्क मैटर को समझाने और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के निर्माण के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है।
तो वैज्ञानिक नई समरूपताओं का अंदाजा लगाते हैं?
हाँ, वैज्ञानिक अक्सर नई और गहरी समरूपताओं का अनुमान लगाते हैं और फिर उनके परिणामों की खोज करते हैं, इस विश्वास के साथ कि ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे स्तर पर गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण और सम्मित है।
अच्छा, तो इस पूरी गहरी चर्चा से मुख्य विषय और संदेश क्या निकलते हैं? अगर हमें कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है समरूपता को अपरिवर्तनीयता के रूप में समझना। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं, बल्कि किसी चीज के बदलने के बावजूद वही बने रहने की क्षमता है। ये एक शक्तिशाली विचार है जो बर्फ के क्रिस्टल से लेकर ऊर्जा संरक्षण तक सबको एक धागे में पिरोता है।
दूसरा, अमूर्त गणित की आश्चर्यजनक प्रभावशीलता। समूह सिद्धांत, जिसे गैलवा ने एक शुद्ध गणितीय पहेली को सुलझाने के लिए बनाया था, वो बाद में भौतिक दुनिया का वर्णन करने वाली भाषा बन गया। ये वाकई हैरान करता है।
हाँ, जैसे हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने शून्य का आविष्कार किया, अमूर्त था पर उसने विज्ञान बदल दिया।
तीसरा, समरूपता खोज के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। वैज्ञानिक सिर्फ मौजूदा सिद्धांतों में समरूपता नहीं खोजते, बल्कि वे नई समरूपताओं का अनुमान लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। ये विज्ञान करने का एक रचनात्मक तरीका बन गया है।
चौथा, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, समरूपता का टूटना जटिलता पैदा करता है। दुनिया की सारी सुंदरता, विविधता और संरचना इसलिए है क्योंकि पूर्ण समरूपता हमेशा कायम नहीं रहती, वो टूटती है। हमारे आसपास की दुनिया समरूपता और उसके टूटने का एक जटिल और खूबसूरत नृत्य है।
और पांचवा, यह विचार अलग अलग विषयों को जोड़ता है। वही गणितीय समूह जो हमारी दीवारों के पैटर्न या जाली के डिजाइन का वर्णन करते हैं, वही क्रिस्टल की संरचनाओं का भी वर्णन करते हैं। ये कला, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, सबके बीच गहरे अप्रत्याशित संबंध दिखाता है।
हाँ, समरूपता एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है जो ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ लाता है।
किताब में यकीनन कुछ बहुत शक्तिशाली और यादगार विचार हैं। क्या हम कुछ मुख्य विचारों को फिर से देख सकते हैं जो सुनने वालों के मन में रह जाएं?
बात जो दिमाग में बैठ जाती है, समरूपता ये नहीं है कि कोई वस्तु कैसी दिखती है, बल्कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। यह परिवर्तन से अप्रभावित रहने का गुण है। ये परिभाषा समरूपता को एक स्थिर चीज से एक गतिशील प्रक्रिया बना देती है।
दूसरी अहम बात, समरूपता की भाषा समूह है। समीकरणों के बारे में एक अमूर्त पहेली को हल करने के लिए आविष्कार की गई अवधारणा ब्रह्मांड की भाषा बन गई। यह गणित की अप्रत्याशित शक्ति और गैलवा जैसे गणितज्ञों के काम के दूरगामी महत्व को दर्शाता है।
तीसरी, नोएथर के प्रमेय से जुड़ा विचार। एमी नोएथर ने संरक्षण नियमों के पीछे का क्यों खोजा। वे मनमाने नियम नहीं, बल्कि स्थान और समय की समरूपताओं के प्रत्यक्ष तार्किक परिणाम हैं।
यह दिखाता है कि समरूपता कितनी बुनियादी है या भौतिकी के मूलभूत नियमों की असली नींव है। और चौथा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, पूर्ण समरूपता मृत्यु है। समरूपता का टूटना ही दुनिया को रोचक, जटिल और जीवंत बनाता है। ये समरूपता और असमरूपता के बीच के जरूरी संतुलन को पकड़ता है। ये तर्क देता है कि रचनात्मकता, विकास और जीवन के लिए भी समरूपता का टूटना जरूरी है। तो इस सब का मतलब क्या है? इन गहरे विचारों का हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर हम सब पर पड़ता है। सबसे पहले तो प्रकृति और कला की गहरी प्रशंसा। इस किताब को पढ़ने के बाद जब आप किसी फूल को देखेंगे या किसी पुरानी इमारत की नक्काशी को
या तितली के पंखों को,
हाँ, तो आप उनमें सिर्फ सतही सुंदरता नहीं बल्कि छुपे हुए गणितीय पैटर्न और उनके पीछे के सिद्धांतों को भी महसूस कर पाएंगे। ये दुनिया को देखने का नजरिया सचमुच बदल देता है। आप अपने आसपास की साधारण चीजों में भी असाधारण व्यवस्था देख पाएंगे।
दूसरा, बेहतर वैज्ञानिक समझ। हिग्स बोसोन, सुपर समरूपता, संरक्षण नियम, ये शब्द जो अक्सर खबरों में आते हैं और हमें बड़े जटिल लगते हैं, वे ज्यादा मायने रखने लगेंगे। ये किताब आधुनिक विज्ञान की भाषा को समझने का एक ढांचा देती है।
हाँ, अब जब कोई कहेगा सिमेट्री ब्रेकिंग हुई, तो शायद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है।
तीसरा, इसे समस्या समाधान के एक तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस हो, इंजीनियरिंग हो, कला हो,
या व्यक्तिगत जीवन की कोई चुनौती,
हाँ, ये पूछना कि यहाँ बदलती परिस्थितियों में क्या स्थिर रहता है या इस सिस्टम की अंदरूनी समरूपताएं क्या हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने का एक नया नजरिया दे सकता है।
और चौथा, सीमाओं या बाधाओं की रचनात्मक शक्ति को समझना। जैसे हमने देखा कि समतल पर पैटर्न बनाने के सिर्फ 17 गणितीय तरीके हैं।
हाँ, वो वॉलपेपर ग्रुप्स।
हाँ, ये दिखाता है कि नियम या बाधाएं रचनात्मकता को हमेशा सीमित नहीं करती बल्कि उसे एक ढांचा देती हैं जिसके भीतर अनंत विविधता संभव है। ये संगीत के रागों पर, कविता के छंदों पर या किसी भी रचनात्मक कार्य पर लागू होता है जहां नियमों के भीतर रहकर ही सुंदरता रची जाती है।
और शायद सबसे गहरा प्रभाव विश्व दृष्टि में बदलाव है। ये एहसास कि ब्रह्मांड बेतरतीब और अराजक नहीं है बल्कि सुरुखिपूर्ण छिपे हुए गणितीय सिद्धांतों द्वारा शासित है, ये एक तरह का विस्मय पैदा करता है।
हाँ, एक आश्चर्य का भाव। ये दुनिया को ज्यादा व्यवस्थित, सुंदर और समझने योग्य दिखाता है।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि एक अकेली सुरुचिपूर्ण अवधारणा समरूपता कैसे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी बन सकती है। स्टुअर्ट हमें सतह पर दिखने वाली चीजों से उठाकर गहरे अमूर्त सिद्धांतों तक ले जाते हैं
और दिखाते हैं कि कैसे वही सिद्धांत,
हाँ, कैसे वही गणितीय सिद्धांत एक साधारण टाइल वाले फर्श से लेकर क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांड की विशाल संरचना तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं। ये ज्ञान की एकता को दर्शाता है।
संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें जो मुझे याद रहेंगी, समरूपता बराबर अपरिवर्तनीयता, समूह सिद्धांत प्रकृति की वर्णमाला, भौतिकी के नियम समरूपताओं की अभिव्यक्ति नोएथ, और समरूपता का टूटना जटिलता और सुंदरता का स्रोत।
बिल्कुल, इसे पढ़ने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया वाकई बदल जाता है। आप अपने आसपास, प्रकृति में, कला में, यहाँ तक कि विज्ञान की खबरों में भी छिपी हुई गणितीय संरचनाओं को पहचानने लगते हैं और उस विज्ञान की सराहना करते हैं जो इन सुरुचिपूर्ण सिद्धांतों की खोज में लगा है।
हाँ, ये किताब कला, गणित और विज्ञान को खूबसूरती से जोड़ती है।
दिखाती है कि ज्ञान असल में कितना जुड़ा हुआ है।
सच में, ये सोचना कि एक अमूर्त गणितीय विचार जो शायद किसी गणितज्ञ के दिमाग में सिर्फ एक पहेली सुलझाने के लिए आया था, वही विचार हमारे विशाल ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है, ये अपने आप में एक आहा क्षण है, एक अद्भुत एहसास है।
है ना?
ये हमें याद दिलाता है कि जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है।
बिल्कुल, और शायद यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या और भी ऐसी गहरी अनदेखी समरूपताएं हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है, जो वास्तविकता की और भी परतों को खोल सकती हैं।
भविष्य की खोजें शायद इन्हीं छुपी हुई समरूपताओं पर आधारित होंगी।
हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।